इस्लाम में बालाधिकार।
श्रोताओ, कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रमों में हमने इस बात की समीक्षा की थी कि मानवाधिकार के दस्तावेजों और बाल अधिकार के कन्वेंशन में वर्णित कितनी बातें बाल अधिकार के बारे में इस्लामी शिक्षाओं में वर्णित बिंदुओं से मेल खाती हैं। बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुच्छेदों और इस्लामी धर्मशास्त्र में कुछ अंतर के बावजूद कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाल अधिकार के समर्थन में दोनों पक्षों ने संयुक्त कोशिश की है।
इस्लाम ने आरंभ से ही बाल अधिकार के मामलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इस्लाम ने संतान की हत्या से रोका है और पैगंबर इस्लाम ने भी इस कृत्य की बुराइयों को लोगों को पवित्र कुरान की आयतों की व्याख्या के जरिए समझाया। पवित्र कुरान में श्रेष्ठता का मानदंड सदाचारिता और ईश्वर से डर को बताया है। इस्लाम ने लिंग को श्रेष्ठता का आधार नहीं माना है, जैसा कि उस समय के लोग लिंग को श्रेष्ठता का आधार समझते थे। जैसा कि ईश्वर पवित्र कुरान के हुजरात सूरह की आयत नंबर 13 में फरमाता है, हे लोगो, हमने तुम्हें पुरुष और स्त्री से पैदा किया और तुम्हें विभिन्न कबीलों व राष्ट्रों में बांट दिया ताकि एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में ईश्वर के निकट तुम में से सबसे ज्यादा सम्मानीय वो है जो सबसे ज्यादा सदाचारी है।
इसी तरह पवित्र कुरान के इसरा सूरे की आयत नंबर 31 में ईश्वर कह रहा है, निर्धनता के डर से अपने बच्चों को जान से ना मारो, हम उन्हें और तुम्हें रोजी देते हैं, निसंदेह उन्हें जान से मारना महापाप है। आज ये हकीकत साबित हो चुकी है कि बच्चों को कम उम्र में न सिर्फ शारीरिक दृष्टि से देखभाल की ज़रूरत होती है बल्कि सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक और व्यक्तित्व की दृष्टि से भी देखभाल की ज़रूरत होती है। इंसान के बच्चों में बचपन से ही सामाजिक जीवन स्थापित करने की क्षमता होती है। इस बीच माँ बाप का रोल बहुत ही निर्णायक अहमियत रखता है। बच्चे अपने माँ बाप से सामाजिक संबंध सीखते हैं। अगर हम बच्चे का ऐसा प्रशिक्षण करना चाहते हैं कि वो समाज में सक्रिय रहे तो उसकी ज़रूरतों को शुरू से ही पूरा करें और इस लक्ष्य के लिए उसकी सामाजिक ज़रूरतों को पहचानें।
आमतौर पर बच्चा सामाजिक होने की प्रक्रिया में माँ बाप में खास तौर पर माँ को आदर्श करार देता है और इसलिए बच्चे की ज़रूरत की पहचान और उसके व्यवहार में सुधार का बच्चे के व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू पर बहुत असर पड़ेगा।
इस्लाम में मानव जाति के लिए परिवार को सामाजिक आधार कहा गया है। इस बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईश्वर के निकट इस्लामी संस्थाओं में शादी और परिवार से अधिक पसंदीदा कोई संस्था नहीं है। यही वजह है कि परिवार को बाल अधिकार कन्वेंशन की प्रस्तावना में मूल गुट की संज्ञा दी गई है, जिसके दायरे में बच्चों का विकास हो, क्योंकि परिवार में ही बच्चे के विकास के अनुकूल स्वाभाविक वातावरण मुहैया होता है। बच्चे का व्यक्तित्व भौतिक व आत्मिक जरूरतों की पूर्ति होने पर विकसित होता है। बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार उसका मूल अधिकार है। ये अधिकार उसे परिवार और समाज की ओर से मिलना चाहिए ताकि जब वो समाज में सक्रिय हो तो अच्छे व्यक्तित्व के साथ आए, उसमें दूसरों के साथ किसी तरह का भेदभाव या अपमान करने की भावना न हो।
बच्चों को पैदाइश के समय से ही माँ बाप के विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है ताकि उनकी अच्छी तरह परवरिश हो। बच्चों के विकास का एक अहम आयाम उनका भावनात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य है। बच्चे में पैदाइश के आरंभ में भावना सुकून और बेचैनी के रूप में प्रकट होती है। फिर बाद के महीनों में बच्चे में खुशी, हंसी, दुख, डर और क्रोध जैसी दूसरी प्रकार की सकारात्मक व नकारात्मक भावनाएँ पैदा होती हैं। नवजात में रुचि, नफरत और खुद को मजबूर समझने की भावना पैदाइश के समय से होती है। नवजात जब 3 से 4 महीने का होता है तो वो क्रोध, दुख और हैरत का अनुभव करता है। बच्चा 5 से 7 महीने के बीच डर का अनुभव करता है। इसी तरह बच्चे में शर्म की भावना 6 से 8 महीने की उम्र में पैदा होती है। बच्चे में शर्मिंदगी और गुनाह की भावना 2 साल के आरंभ में जागृत होती है।
नवजात को पैदाइश के आरंभ से माँ के साथ शारीरिक संपर्क की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उसे पूरे दिन कई घंटे तक माँ से अलग नहीं होना चाहिए। शोध दर्शाते हैं कि 6 महीने से 3 साल की उम्र तक माँ की औलाद के पास मौजूदगी का उसके भावनात्मक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में बहुत असर पड़ता है।
वास्तव में माँ बाप द्वारा बच्चे की परवरिश की सही शैली का उसके विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। विशेषकर जीवन के आरंभिक साल में माँ बाप बच्चे में आत्मसम्मान की भावना के विकास का मूल स्रोत होते हैं। इसी तरह बच्चा माँ बाप से दूसरों को रोकने टोकने का तरीका सीखता है। इसी तरह बच्चा दूसरों से संपर्क बनाने की सही शैली माँ बाप से सीखता है। जो माँ बाप बच्चों से हमेशा मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके साथ तर्कपूर्ण व संतुलित व्यवहार अपनाते हैं, वे अपने बच्चों में सही सामाजिक व्यवहार को प्रकट करने का शौक पैदा करते हैं। इसी तरह वे अपने बच्चों में क्षमताओं को निखारने की पृष्ठभूमि मुहैया करते हैं। इसके विपरीत जो माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत पाबंदी लगाते हैं और उन्हें झिड़कते हैं, वे अपने बच्चों को क्षमताओं के निखारने से वंचित करते हैं। इस तरह के बच्चों के मन में समय बीतने के साथ साथ ये विचार जड़ पकड़ लेता है कि वो अपने माँ बाप के बिना अपने जीवन के मामलों व विषयों का सामना नहीं कर सकते। ऐसा विचार उनमें डर व बेचैनी को जन्म देता है। इसी तरह बच्चे का अपमान, बार बार उसकी आलोचना व डांट टपट, अपमानजनक शब्दों से उसे पुकारना, वे तत्व हैं जो उसके मन में द्वेष व घृणा की भावना को जन्म देते हैं।
जो कुछ बातें इस्लामी शिक्षाओं, कुरानी आयतों, पैगम्बर इस्लाम के कथनों और उनके पवित्र परिजनों के आचरण से पता चलती हैं, वे बच्चों में नैतिक दृष्टि से बहुत ही कोमल भावनाएं होती हैं जो समय के साथ चरणबद्ध रूप में विकसित होती हैं। इस विकास के लिए शिक्षा व परवरिश के माहौल का उचित व स्वस्थ होना जरूरी है ताकि धीरे धीरे निहित क्षमता प्रकट हो। जिस तरह बच्चे के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नाना प्रकार के खाने की जरूरत होती है, उसके वैचारिक विकास के लिए भी उचित माहौल व संसाधन का मुहैया होना जरूरी है।
इस्लाम बाल अधिकार को व्यापक आयाम और बच्चे के व्यक्तित्व को गहरी नज़र से देखता है। व्यक्तित्व ऐसे गुणों व विशेषताओं का समूह होता है जिसे एक व्यक्ति दूसरों से भिन्न नज़र आता है। पवित्र कुरान में इंसान के व्यक्तित्व के बारे में व्यापक बहस है। पवित्र कुरान में इंसान को बहुआयामी प्राणी कहा गया है, अर्थात इंसान के व्यक्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक आयाम होते हैं। ये दोनों आयाम पूरे इतिहास में किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व और उसमें मानवीय पहलू को स्वरूप देते हैं।
जिस चीज़ पर समाजशास्त्री और धर्मशास्त्री बल देते हैं वो ये है कि बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जरूरी है जिससे उसके व्यक्तित्व का सामाजिक आयाम विकसित हो और वो वैचारिक परिपक्वता तक पहुंचे।
बाल अधिकार को बच्चे की परवरिश में मूल विचार और उसके स्वस्थ आत्मिक व मानसिक विकास में बहुआयामी मददगार समझा जाता है। बुरे नौजवानों के हालात की समीक्षा से पता चलता है कि बचपन में उनके अधिकारों का हनन हुआ या उन्होंने आत्मिक व मानसिक यातना को अपनी आंखों से देखा।
ईश्वरीय धर्मों में, खासतौर पर इस्लाम में, एक स्वस्थ समाज के ढांचे के लिए बच्चे के जिन अधिकारों पर बल दिया गया है, बाल अधिकार कन्वेंशन में बहुत जगहों पर उन्हीं बिंदुओं का उल्लेख है जिसके लिए विश्व समुदाय को प्रेरित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाज के नियमों व कानून को बदलाव की नज़र से देखना और उसकी बाल अधिकार के हित में व्याख्या से ये खुशखबरी मिलती है कि विश्व जनमत को एकमत बनाने का उद्देश्य उन खतरों को रोकना है जो बच्चों के उनके कानूनी व वास्तविक अधिकार तक पहुंचने में बाधा बनते हैं।